ओम शांति। हमारे बीच बाबा की वो अनुभवी रतन, अनमोल रतन, कई बार बाबा कहते शब्दों का ज्ञान नहीं चाहिए, अनुभव में चाहिए। जितना अनुभव होगा उतना अनेकों को अनुभूति करा सकेंगे। तो बाबा के वो अपन मूल रतन हैं, जिन्होंने साकार मम्मा बाबा दादियों को करीब से देखा और सब अनुभव किया है। आपकी विशेषता है, बाबा के लिए कहा जाता सोमरस पिलाने वाला, ऐसा कहते ना, सोमरस पिलाने वाला। आज सोमवार का दिन है और आप बाबा के बच्चे, बाबा के अनुसार ही वो ज्ञान का सागर सोमरस पिलाता और आप ज्ञान अमृत, ज्ञान अमृत पढ़ते हैं आप सभी, पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं हाथ खड़ा करो। तो ज्ञान अमृत जो अपनी मासिक पत्रिका आती है उसके भी आप संपादक हैं और साथ साथ विशेषता आपकी कि आप यज्ञ के वो पुराने वत्स परिवार हैं जिनका पूरा संपूर्ण परिवार ही यज्ञ में समर्पित हुआ। मात पिता भाई बहन, जहां तक मुझे मालूम है भाभी, सब सब पूर्ण परिवार यज्ञ में समर्पित हुआ। और अभी थोड़े समय पहले ही बहन बहन ने शरीर छोड़ा था, थोड़े समय, संपूर्ण परिवार इसमें लग गया बाबा के कार्य में जैसा बाबा चाहता है। तो अभी हमारे बीच आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, हम आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं हृदय से, सुनेंगे हम भाई साहब को।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत बहुत सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों? देखो, इतनी बड़ी दुनिया है, 7 बिलियन लोग हैं, यानी 700 करोड़ इस वक्त लगभग आबादी है। उसमें से स्वयं भगवान ने हमको आके चुना है, ढूंढा है। आप कहेंगे हमने तो बहुत उनको ढूंढने की कोशिश की, वो तो मिला ही नहीं। द्वापर से भक्ति करते हैं, उसको ढूंढते हैं, लेकिन मिला ही नहीं तो क्या करें। वास्तव में उसने ही ढूंढा है, हम तो ढूंढ ही नहीं सके क्योंकि हमें उसका परिचय ही नहीं था। देखो, ढूंढा उसको जाता है जिसको परिचय हो। अगर आपका कोई भाई खोया जाए और आपको उस भाई का परिचय न हो, भाई है कि नहीं है, कौन है, तो मिलेगा आपको, ढूंढ सकेंगे। इसी प्रकार से भगवान का परमपिता परमात्मा, हम शिव बाबा कहते हैं, उसका परिचय ही नहीं था हमको बिल्कुल, तो ढूंढेंगे कहां, मिलेगा कैसे। इसलिए बाबा ने हमको खुद ही ढूंढा है, खुद ही चुना है, बल्कि और इतनी बड़ी दुनिया में से हमको चुना है आकर के। कितना तो भाग्य है ना, स्वयं भगवान के हम चुने हुए रतन है आप लोग, हम सभी, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आप बाप भट्टी करने के लिए आए, कहां पर आए भट्टी करने, पांडव वन, जहां पर शिव बाबा के ब्रह्म रथ में प्रवेश होकर के कदम पड़े, चरण पड़े, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जहां पर विचरण किया, हम दोनों से मिले हुए, केवल बाबा से नहीं, बाबा मम्मा दादिया जितने पूर्वज हैं 1962 में हम आए ज्ञान में ना, 57 में आए ज्ञान में, 1957 यानी 62 साल हुए इस ज्ञान में आए हुए, केवल 20 साल की एज थी तभी ज्ञान में आए, तो तभी तो यहां ये कुछ था ही नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं थी ना, ये हिस्ट्री हॉल था ना वो ट्रेडिंग सेंटर था, ट्रेडिंग वो जो रहती पहले कुछ का एक बीच का वो जगह थी जहां पर बाबा टीन का छप्पर था, अब तो थोड़ा फिर भी इम्प्रूव कर दिया गया है, वही पर ही क्लास होती थी देख लो। उस वक्त हम आए थे ज्ञान में 1957 में, तो देखो बहुत टाइम बीत गया, बहुत टाइम बीत गया, अब बचा कितना, थोड़ा टाइम बचा है, अब जो अब तो जाने की तैयारी है ना, तैयारी के नहीं तैयारी है, होनी चाहिए। देखा तो तैयारी कैसे होगी, बाबा कहता है जब ही देखो, एक बाबा ने मुरली में सुनाया था, बहुत मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने नोट कर रखा कि बच्चे सबसे बड़ा पुण्य का काम कौन सा है, आप बताओ सबसे बड़ा पुण्य का काम कौन सा है, भगवानों वाज एक मुरली में स्पेशल का है, बोलो कौन सा है, बोलो है? बाबा ने स्पेशल कहा कि औरों को ज्ञान देना, ये करना करना, ये तो ठीक बात है, लेकिन ये करना अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। देख लो अभी आप आए हैं यहां भट्टी में, कैसे लिए आए हैं, यही स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करने के लिए, तो बोल और कोई तो बोलने वो करने के लिए, पिकनिक करने के लिए आया नहीं, यही अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए आए हैं, पहले वहां भी तो करते हैं, भट्टियां भी करते होंगे, क्लास भी करते होंगे, योग भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, मैं तो यहां पर किस लिए आया है कि और ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाए, इस और हम पुण्य जमा कर ले, ये बहुत बड़ा पुण्य है, क्यों पुण्य है, इससे कितने फायदे हैं, अपने को तो फायदे है ही है, सारी प्रकृति को फायदा है, लोगों को फायदा है, एटमॉस्फेयर बदलता है, दुनिया बदल दी है, इसी एक याद से अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर, भगवान वाच, ये अगर आप करते हैं, अटेंशन है, तो आप बहुत बड़े पुण्य आत्मा है। देखो तो बाबा ने आपको चुना, आप यहां पर आए, बड़ी खुशी की बात, हमें भी आपसे मिलने का मिला, मौका मिला, सूरत से आए कुछ, एक बार हम भी सूरत कभी गए थे जब लता बहन थी, तभी गए थे शायद, बहुत पहले की बात है, उसके बाद तो नहीं जाना हुआ, तो देखिए तो बाबा ने बुलाया और इसी कार्य के लिए, आप अभी तो रहेंगे और दिन पूरा भर के जाए याद का, और इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करे, हमको भी आज से 62 वर्ष पहले चुना, जैसे आपको चुना ना, हमको भी चुना, और चुनने के बाद क्या किया, देखो आप जाते हैं मार्केट में, कुछ चीज लेके आते हैं, चुन के आते हैं, मैंगोज लेके आते हैं, चुन के आते हैं, मानो तो क्या करते हैं उसको, कुछ यूज करते हैं ना, ऐसे नहीं कि छोड़ देते हैं, पड़े रहे खराब हो जाए, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बाबा ने भी हम बच्चों को चुन के एक और क्या काम किया, हमको किसी कार्य में लगा दिया, ये भी देख लो, आप सभी को भी कार्य में लगा दिया, क्या कहता है बाबा, बच्चे ज्ञान सुनो और औरों को, रोज मुरली में होता है, रोज सुनो और सुनाओ लोगों को, परिचय दो, हर रोज आजकल मुरली में आ रहा बच्चे, ये सुनो और औरों को सुनाओ, औरों को सुनाओ, तो क्या ड्यूटी देता है बाबा, पहले तो हमको चुना इतनी बड़ी दुनिया में से, फिर कहा बच्चे आप औरों को भी सुनाओ, ये ड्यूटी भी दे देता है, कार्य भी दे देता है, तो हमें भी आज से 62 वर्ष पहले चुना, फिर हमें मुझे हम गए थे रशिया गए थे, तो एक भाई ने पूछा प्रश्न, आपका व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट डे, इस लाइफ में सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा है, था या है, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप ये बताइए आपका सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा था या खुशी का दिन कौन सा है। कौन सा बताओ? क्या क्या बाबा मिला? और कोई बताओ? देखो मैंने कहा बाबा तो मिला, मैंने कहा पहले मुझे बाबा तो मिला नहीं, हम बताएं क्लियर, हमको तो पहले ज्ञान मिला। देखिए मैंने कहा भी हैप्पीएस्ट डे के मैं तीन हिस्से करता हूं, एक था हमारा हैप्पी डे, आई वॉज वेरी हैप्पी, दूसरा था हमारा हैप्पियर डे, बहुत खुशी हुई, तीसरा था हमारा हैप्पीएस्ट डे। उसने कहा बताओ कैसे? मैंने कहा हैप्पी डे वो था जब हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में पटियाला में, हम एक भाई थे ओम प्रकाश जी, जो अब तो शरीर छोड़ के हमारे मित्र थे, बड़े अच्छे साथ साथ रहते थे, उन्होंने हमें ये ज्ञान देना शुरू किया, आप आत्मा है शरीर नहीं है, जिसे होता है पहला पहला लेसन देखा, ये तो वो सुनने वाला नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे एक हमारे पास गीता थी पुरस्कार में मिली थी, वो होती ना छोटी सी गोरखपुर की गीता छोटी वाली, संस्कृत हमने कभी पढ़ी भी नहीं थी, उसने हमारे टेबल पर देख ली, कहता ये तो बड़ा धार्मिक है, तो उसको ज्ञान दो, शुरू किया, वो मैंने कभी देखी भी नहीं पढ़ी भी नहीं, उसने देख ली भी ये तो अधार्मिक आदमी, क्योंकि बाबा कहता किसी को कॉलेज में ज्ञान देना है पढ़ते इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी उल्टे सुलटे वो ज्ञान दोगे तो और ही वो हमारा मजाक बनाएगा, वो उसने मुझे ज्ञान देना शुरू किया। मैंने उसने कहा आप आत्मा है? मैं कहूं तो मैं आत्मा नहीं हूं, आप सिद्ध करके बताओ कि मैं आत्मा हूं। दो तीन दिन डिस्कशन होती रही, एक दिन उसने कहा आप ये मान जाओ कि आप आत्मा है, हम अंदर से मानते थे, बड़ी हमने भक्ति की थी बचपन में, एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की थी हमने, ऐसा मुझे याद है, छोटे बच्चे 6 साल के, भाई ध्रुव की तरह होंगे तो हमें वो विष्णु जी के साक्षात्कार हो जाएंगे मंदिर में जाके, तो लेकिन जैसे पढ़ते गए तो नास्तिक बनते गए, कुछ सब छोड़ छाड़ दिया। तो जब हमें उसने कहा आप आत्मा है, मैं कहा हम नहीं आत्मा, वो कहते रहे हम बोलते रहे, एक दिन कहा आप ये मान जाओ कि आप आत्मा। अच्छा मैंने कहा ठीक है आज मैं मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, आत्म प्रकाश तुम्हारा नाम था ही, तो बस ऐसा मैंने कहा, इतना सच कहता हूं, उसी वक्त मुझे अनुभूति शुरू होने लगी, सच एवरीथिंग, बस हम पहले पिक्चर देखना ये जेना वो देखना सब प्रकार के उल्टे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन टाइम वेस्ट करना गपशप लगाना ये करना कॉमन रूम में खेलना ये करना सब कुछ था। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या था, माँ बाप भेजते जाएं भी ऐसे पढ़ के आएंगे तो डिग्री लेके आएंगे, वो डिग्री लेके SBO बनेंगे ये बनेंगे वो बनेंगे, उनको नहीं इच्छा थी। लेकिन उसने कहा भाई तुम आत्मा, जब सुनते ही सब चेंज आ गया, अनुभूति होनी शुरू होगी, शरीर से न्यारापन शुरू हो गया, लिखना शुरू कर दिया मैं आत्मा हूं शरीर रहे हूं आत्मा हूं शरीर, सब जगह किताब पे क्या दीवार पे क्या अलमारी पे क्या ये लिखना शुरू कर दिया। जब बाबा ने भी शायद पहले बहुत लिखा बनारस में, तो मेरा भी यही लिखा, मैं कहूं मुझे अभी हिस्ट्री सुननी थी बाबा मम्मा की, तो फिर अब मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद आया, हैप्पी हुआ, बहुत खुशी हुई, हल्कापन फील हुआ। तो मैंने कहा दैट वाज माय हैप्पी डे। फिर मैंने उस भाई से कहा जी अभी और भी मुझे ज्ञान सुना दो जो आपके पास है, सारा ज्ञान 2-3 दिन में सुनवा, कोई हमें कोई क्वेश्चन नहीं, आत्मा क्या है परम धाम, जैसे ज्ञान और विज्ञान की बाबा ने आज बात की है, ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है परम धाम क्या है ये क्या है, अब वो सृष्टि चक्कर हूबू रिपीट होता है 5,000 वर्ष का है, कोई क्वेश्चन नहीं, बल्कि जो हमने पढ़ा था गीता में अर्जुन हम पहले भी थे अब भी आए फिर भी मिलेंगे, वो है ना उसमें एक है फिर सुनाता रहूंगा मैं आपको, तो रिपीट होता है तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया, हर एक बात का निश्चय हो गया कि बिल्कुल ठीक ज्ञान है, वंडरफुल ज्ञान है, साइंटिफिक हम बताएं आपको ये ज्ञान वंडरफुल है, साइंटिफिक का है, रीजनेबल है, एक्सपीरियंसेबल है, प्रैक्टिकल है ज्ञान, ये ऐसा कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत ही रमणीक भी ज्ञान है ये, बाबा कहते ये कितना इसमें कमाल का ज्ञान है। तो सुना था मुझे तो कपार ही खुल गया, बड़ी खुशी होगी बहुत, तो पहला दिन तो खुशी का हमारा वो था। तो फिर मैंने उनको कहा भाई आपको इतना ऊंचा ज्ञान जो मिला है कहां से मिला मैं बताओ तो सही, उन्होंने कहा कि ये, फिर उन्होंने परिचय दिया बाबा है मम्मा है, शिव बाबा का तो परिचय मिला था, अब वो उन दिनों में क्या था मधुबन बहुत छोटा कोई सेंटर पॉइंट वो तो था ही, बाबा मम्मा यहां रहते थे लेकिन कोई सेवा का पॉइंट नहीं था, सेंटर ऑफ सर्विस नहीं था, यहां तो लोग आए महीने में, साल में एक दो बार हम आते थे बस, कुछ ज्यादा। अभी जैसे आप आए, तीन चार बार आएंगे, पांच बार आएंगे, छह बार आएंगे, अभी ये प्रोग्राम है, आपकी मेला का प्रोग्राम अभी ये है, कितनी दफा आते हैं बताओ। तब तो साल में एक दो बार मुश्किल से आते थे, वो भी गर्मियों के दिनों में। तो बाबा मामा हमेशा दिल्ली आएंगे, बॉम्बे। सेंटर कितने थे? दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर भी नहीं था, अहमदाबाद भी नहीं था, और पंजाब में अमृतसर, अंबाला और सहारनपुर, करनाल भी नहीं था, पटियाला भी नहीं था, कोई नहीं, बहुत थोड़े सेंटर थे, शाहबाद, हरगोबिंदपुर। तो बाबा आते थे, दिल्ली में आते थे, कानपुर था, अब पटना उसके बाद बना, थोड़े 10-20 सेंटर मुश्किल से होंगे। तब बाबा वहां बड़े बड़े सेंटरों पर जाते थे और बच्चे जो है छोटे छोटे सेंटरों से आकर उनसे मिलते थे। तो बाबा, मैंने कहा भी आपको जो ज्ञान देने वाले हैं मैं उनसे तो मिलाओ। फिर उन्होंने कहा कि ये बाबा मम्मा आए हुए हैं दिल्ली में, आप जाओ। ये 1957 की बात है। तो बाबा मम्मा रजौरी गार्डन में आए हुए थे, कोई दिल्ली के भी यहां बैठे होंगे, D8 में आए हुए थे रजौरी गार्डन में। हम गए तो दूसरा हम कहते हैं वो हैप्पियर डे कौन सा था, तो जाके सुबह वो क्लास के बाद बाबा मम्मा से मिलना हुआ। तो गद्दी पर बाबा बैठे थे, मम्मा बैठे थे, तो जैसे ऐसे है कि देखते ही जैसे कि दो फरिश्ते बैठे हों या हंस के हंस बैठे हों, बिल्कुल वस्त्र सफेद, शक्लें सफेद, चमकते हुए चेहरे, ये वो सब प्रकार की आप देखते हैं ना, बहुत एक ऐसी पर्सनैलिटी हमने लाइफ में पहले न कभी देखी ना अब भी देखी है। बाबा मम्मा की पर्सनैलिटी और कहीं भी नहीं देखी हमने, हम बताया, वंडरफुल पर्सनैलिटी थी, बड़े प्रभावित हुए और निश्चय हो गया देखते ही कि यही हमारे लौकिक, अलौकिक और पौरलौकिक माता पिता है, देखते ही। तो बाबा से, बाबा को तो पता नहीं मालूम था क्या था, बाबा कैसे मिलते थे बाबा मम्मा से, मालूम आपको? कोई हाथ जोड़ो या पांव पकड़ो, कभी नहीं, ये नहीं कभी होता था, बस सीधा बाबा मम्मा की गोद में जाते थे, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, कोई भी हो, सब बाबा मम्मा की गोद में। जैसे माँ मिलती है, बाप मिलते हैं, ऐसे ही बाबा मम्मा बच्चों से मिलते थे, हादेक से लाइन में बैठते थे, नहीं जैसे जैसे लाइन में पहले एक आएगा, फिर दो आएंगे, फिर तीन आएंगे, टोली खिलाएंगे, बाबा से मिले। तो बाबा ने देखो महावाक्य क्या उच्चारण किए, पहले मेरे प्रति आप देखिए, फर्स्ट अभी हफ्ता 15 दिन हुए होंगे ज्ञान सुने हुए, भगवानो वाच हमारे प्रति क्या था। बाबा ने कहा बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, मैं हाँ जी, बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती है बाबा, होती तो है ही है, और 4-5 साल पढ़ेंगे, बहुत बहुत लंबा टाइम है, तो ये तो बच्चे ये पढ़ाई तो काम आने वाली है ही नहीं, ये देख लीजिए, ये बोला मेरे प्रति, बच्चे ये पढ़ाई कभी ये काम नहीं आएगी। तो वो तभी बाबा ये कह रहे थे विनाश तो सामने खड़ा है, देखो जैसे अभी कहते ना विनाश सामने खड़ा, तब भी विनाश सामने बाबा कहते थे। तो हमें तो तब भी निश्चय था, अब भी ऐसा नहीं कि अभी हम इतना टाइम हो गया था हमें निश्चय नहीं है, अब भी वैसे लगता है जैसे पहले लगता था कि विनाश सामने खड़ा है, कभी भी हमारा अपना भी विनाश हो सकता है, क्या कह सकते। तो इस बात को सुन के मैंने कहा बैराग तो पहले आ चुका था ज्ञान सुन करके, ये निश्चय है, जिसको ज्ञान सूट करेगा, जिसको ज्ञान में निश्चय हुआ, वैराग्य तो आएगा ही आएगा। आप कहेंगे पहले माफिक होगा, कुछ ना कुछ उसके लाइफ में चेंज आएगा, वैराग आएगा, दुनिया से थोड़ा किनारा करेगा, अपने समेटेगा अपने कार्य को, ताकि अब घर जाना है तो उसकी तैयारी करेगा, तो ये अवश्य इस ज्ञान से वैराग्य तो आना ही है, तभी तो योग लगेगा। तो हमने कहा बाबा बात तो ठीक है। फिर हम मम्मा से मिले, आंसू आ रहे थे हमारे, मम्मा ने कहा आप तो बच्चे मिल लिए, बाबा मम्मा से मिलकर के बड़ी खुशी हुई। तो ये हमारा हैप्पियर डे था, हम बताए आप कि बाबा मम्मा से मिल लिए, हैप्पियर डे। हम वापस आए तो हाँ हाँ मैंने एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में वहां से, उस वक्त तो कंप्यूटर नहीं थे, सिंपल लेटर लिखा, वो बड़ा सजा के बॉर्डर लगा के जैसे ना होता है ये, और लिखा बाबा क्या लेटर लिखा आप देखो, बाबा आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिजाइन बिल्डिंग, आई वॉज सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता था, बट आई वॉन्ट टू बी ए कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस, ह्यूज बिल्डिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड विच यू आर कंस्ट्रक्टिंग एंड डिजाइनिंग. फिर लिखा आई डोंट वॉन्ट टू रन ऑन, आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड कमिंग टू गोल्डन एज. फिर लिखा आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन मशीनरी, वो दो साल इकट्ठे होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इकट्ठे होते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन मशीनरी बट आई वॉन्ट टू बी ए, बाबा उन दोनों बहुत कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी जो है किंग एंड किंग क्वीन मेकिंग मशीनरी है. आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड. ये लिखा हमने लेटर बाबा को, बाबा का लेटर विद इन टू डेज बाबा ने बड़े गोल्डन अक्षर में पहला पत्र लिखा. तो क्या इंस्ट्रक्शन दी, हमने कहा जो बाबा ने हमें इंस्ट्रक्शन दी भले और बातें ना कर सके, बाबा का था 8 घंटे योग करो, भी हमारा तो 8 घंटे योग नहीं, आपका तो होगा शायद, अच्छा हमारा तो अभी बहुत कम है. अच्छा तो बाबा ने कहा कि बच्चे चाइल्ड, जो बाबा इंग्लिश में जवाब दे आप, चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स, जो आपके स्टूडेंट्स हैं तो वो इंजीनियर्स हैं उनको ज्ञान दो, एंड टू यूर लोकिक फैमिली दो बातें बताई. तो हमने शुरू हो गए जैसे बाबा ने काम ने किया. बुक लिटरेचर उन दिनों में बहुत था ही नहीं खास, एक वो निकलती थी त्रिमूर्ति मैगजीन, बहन जी को पता होगा आप तो उन दिनों में थे ना, त्रिमूर्ति मैगजीन जगदीश भाई निकालते थे, हम मंगवाते थे 15-20-50 मंगवाते थे, बस में चले गए सबको बांट दिया लो पढ़ो सब, और उसमें हमारे स्टूडेंट भी होते थे इंजीनियर्स, फिर नीचे उतरते थे सबसे वापस लेते थे डेढ़ वापस. फिर जो इंटरेस्टेड था कहते ये क्या आपका ज्ञान है, उन दिनों में ये थी कि धारणा की बात होती थी ज्ञान में ना, एक पेज खोलेंगे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं ये होगा आर्टिकल, दूसरा खोलेंगे गीता का क्वांटिफिकेशन नहीं ये आर्टिकल होगा, तीसरा खोलेंगे आत्मा 84 लाख जीवन नहीं भोगती, ऐसे ऐसे सारे आर्टिकल होते थे, वो पतित पाम नहीं गंगा नहीं, कहते थे ये आपके आर्टिकल क्या है, ये क्या ज्ञान है आपका, सारी उल्टी बातें हैं. अच्छा मैंने कहा मेरे सामने ठहरो, इतना नशा और जोश था, मैंने कहा बताओ परमात्मा सर्वव्यापी कैसी है, कुत्ते बिल्ले में परमात्मा है, एक जैसे जो आर्गुमेंट हम देते हैं कि तो बात तो ठीक है, आपको मान जाते थे फिर वो हमारे स्टूडेंट, हमारी क्लास शुरू होगी आपने हॉस्टल में क्लास शुरू कर दिया हमने, हमारे 5-7 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, हमने दरी बिछाई ग्रामोफोन लाया, वो उन दिनों में ग्रामोफोन था वो क्या होता है ये वो सुई वाला वो बजा करके हम रोज सुबह क्लास करनी शुरू कर दी, तो वो भी आने योगे तो वार्डन के ये क्या सत्संग हो रहा है आपका, भागो यहां से. तो हमने कहा छोड़ो, छोड़ छाड़ के अपना मकान लिया, सेंटर चालू किया, एक जगह बड़ी अच्छी कोठी दी वो लिया, फिर तब हमारी दादी जान की जिया है हमें देखने के लिए, लड़के हैं स्टूडेंट हैं क्या है, हम बहन इनको दे के या ना दे, कैसे दे स्टूडेंट को, कैसे बहन मिलेगी, मिलनी थी तो एक माता भेजी फिर हमारे पास. तो इस प्रकार से वो सेवा में लग गए, जैसे बाबा ने कहा था सेवा करो, तो उन दिनों में कई सेवा केंद्र, कुछ मैं और ओम प्रकाश भाई एक और निकला है, मिट्टू बहन थी वो आ गई, तो वहां पर आसपास सेवा केंद्र चंडीगढ़ नाभा ये वो कई सेवा केंद्र खोलने का हमको मौका बाबा ने खुलवाए, जोश बहुत था होश था ही नहीं. और उसके बाद फिर हम बाबा ने दूसरी बात कह दी अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो, लौकिक परिवार में गए, अब तो बाबा कहते होश से चलो, लेकिन हम उस वक्त हमें तो कोई इस वायस ज्ञान की कोई बात थी नहीं, जिसको मिले ये ज्ञान सुना वो कॉलेज वाले कहे इसके दिमाग को क्या हो गया है, कुछ हो गया शायद, लेकिन हम जाते थे हम क्या देखिए हम तो सब बातें पढ़ाई भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं. फिर हम चले गए लौकिक घर में, पहले माता जी को पकड़ा, वो कहे ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर ज्ञान। फिर पिताजी को पकड़ा, उनको भी अच्छा लगा। फिर और भाई बहन सबको, सबको ज्ञान सुनाया। साहब ने कहा ठीक है, क्लास होनी शुरू होगी वहां, क्योंकि हमारे में मोमेंटम बहुत था, उमंग उत्साह बहुत था, कोई वो हम डरने वाले नहीं थे, किससे डरते नहीं थे। तो क्या हुआ, क्या फिर हमारे लोग एक फादर बड़े भगत थे, वो भागवत पुराण ये पुराण बहुत सुनाते थे, हमें भी सुनाते थे, खुद भी पढ़ते थे, श्री कृष्ण को बहुत भगत थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो हम सब सामने बैठे थे योग में, गांव वाले भी वो भी सब उठ के खड़े हो गए। वो उठ के खड़े हो, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये पकड़े वो पकड़े, ये पकड़े वो पकड़े, और मैं तो आश्चर्य करने लगा ये क्या हो रहा है ये, क्योंकि हमारी ध्यानी दादी थी अम्बाला में, वो ध्यान में जाती थी, हमारे पास पटियाले में आती थी, कभी हमें वो फल देती थी, कभी कुछ देती थी, टोली देती थी, होता ना ऊपर से, तो हम तो वो देखते थे। उनको देख के मैं इसको, इनको क्या हो गया ये, तो बड़ा खुश हो रही है, अभी कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग हैपनिंग। तो फिर नीचे उतरे, कहता भाई बात यह, मैं ऊपर गया कहीं, बहुत सुंदर श्री कृष्ण देखने में आया मुझे, वो ध्यान का पार्ट खुल गया उनका, और उन अभी बाबा नहीं मिले, मम्मा नहीं मिली, किसी बहन को भी नहीं मिले थे, हमारे घर में ही लोग के गांव में। तो कहता मैं श्री कृष्ण को पकड़ता था, वो भाग जाता था, यहां पकड़ू तो वहां, वहां पकड़ू तो वहां, छोटा सा बच्चा मेरे हाथ में नहीं आया, मैंने क्या आप में ताकत नहीं थी क्या बात। तो फिर उसने फिर कहते फिर आपके बाबा जी है ये जो ये आए, उस पर जहाज मूर्ति थी हमारे पास। तो उन्होंने कहा बच्चे जब तुम इस ज्ञान में चलोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, धारणाओं पर चलोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण के भगत तो बहुत थे कि मैं रियल देख रहा हूं। बड़ा खुश हो रहा हूं मैं, कमाल आए तो यहां हमारे वहां तो इनको साक्षात्कार हो रहा है। तो जब फिर हफ्ते बाद फिर भोग लगाया हम सबने बैठ करके, फिर वो ध्यान में गए, फिर श्री कृष्ण की उनकी गोद में आया, बड़े आंसू बहाए उन्होंने, जैसे उनको मिलन हुआ, बड़े खुश हुए वो। ये सब नजारा सब घर वाले देख रहे थे, गांव वाले देख रहे थे, उन्होंने कहा भगत जी को क्या हो गया। उस कारण से सारे घर वाले ज्ञान में आ गए, हम बताए आप। फिर हमारे बड़े भाई थे लक्ष्मण जी, वो भी ज्ञान में आ गए, सारे भाभी ये वो सब बाबा के बच्चे बन गए। तो कितने देखो, बाबा ने जो बात कही थी, बच्चे घर वालों को ज्ञान दो, तो हमने दिया, बाबा की बात मानी तो ज्ञान में चल पड़े। फिर तो साहब को खत्म खत्म करके सब, कोई कोई कहीं चला गया, वो कहीं चला गया, और हमने भी इंजीनियरिंग कॉलेज चार साल थे, जैसे कैसे पास किया विदाउट एनी इंटरेस्ट, आई टेल यू, कोई इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था। अभी बाबा आ रहे हैं, मम्मा आ रहे हैं, ये प्रदर्शनी है वो सब, उसमें बिजी रहते थे हम लोग। हफ्ता बीत गया था, अब क्लास में जाएंगे तो लोग कहेंगे ये आ गए हैं, देखो हमारी टोप हाजिर लग जाती थी लेकिन हम जाते थे नहीं, हम बताएं आपको क्लियर। पता नहीं फिर बाबा ने कैसे पास करवा दिया, आप बताइए, विदाउट पढ़ाई के, विदाउट एनी इंटरेस्ट, इंजीनियरिंग की पढ़ाई डिग्री कोर्स, फिर भी हम पास हो गए। लोग हम भी आश्चर्य करें, बाबा भी कि तुम पढ़ते तो हो नहीं, कैसे आप पास हो गए, पास हो गए हम, देख लो। तो देखो मैं कहता था, हम बाबा हमेशा कहते हैं मैं तो गांव का छोरा था, कहते ना बाबा, हम भी गांव में रहने वाले थे लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थे, पढ़ाई में बड़े होशियार थे। बाबा ने इंजीनियर बनाया, डिग्री दिलाई हमें, कोई क्यों डिग्राई, बच्चे बाबा जग में आएगा ना, कोई पूछे, कोई इनके पास पीएचडी वाले मिलने आएंगे, कोई मिलने आएंगे कहेगा इस अनपढ़ आदमी शायद, तो वो बाबा ने इसीलिए, हाँ ये भी पढ़ा लिखा है कुछ, इस बात को रखने के लिए बाबा ने डिग्री दिलाई। मैं कहता आई आई नो इंटरेस्ट इन स्टडी, पास हो गए और हम तो डिग्री लेने गए नहीं, क्या करने डिग्री, फिर मैं अपने आप भेजी डिग्री मिल गई हमको। तो इस प्रकार से हमारा जो था पढ़ाई का पूरा हुआ, बीच बीच में मधुबन में आते रहे कई दफा आए। एक बार मधुबन में आए तो तब ये उस वक्त ये नहीं था, ये छोटा हाल ये हाल बन चुका था, हिस्ट्री हाल बन गया था, वहां पर टेनिस कोर्ट था, ये जो है ना अभी शांति स्तंभ टेनिस कोर्ट था, पीछे कुछ नहीं था। वो बाबा क्या खेल रहे होंगे उस वक्त वहां पर बताओ, बैडमिंटन नहीं, वो क्या होती है ये वो टेनिस क्या कहते हैं वो हाँ वही क्रिकेट, क्या हो क्रिकेट खेल देते। तो मैंने बाबा का फोटो ले रहे, मैं ये कमाल है, 80 साल 82 साल की एज है, वो बाबा क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं तो फोटो तो ले लूं। और धोती पहन के बाबा खेल बंद करके बाहर आए, बच्चे फोटो मत लो। मैंने कहा अच्छा नहीं लेते। फिर चल बाबा ने कहा चलो बच्चे का दिल है तो ले लो। तो हमने ले लिया फोटो, अब रखा तो नहीं हमने वो, क्यों ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे, कैमरे भी बेकार के होते थे उस वक्त। तो हमने वो ले लिया, तो देखो मैंने ये कहा कि देखो बाबा उस वक्त कितने फिट थे, बैठते थे मजा जैसे, हम तो टेक लगा के बैठेंगे तो सीधे बैठते थे और टांग पे टांग चढ़ा के बैठते थे उस वक्त, एट द एज ऑफ 82 80। कितनी फिटनेस थी, इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग में भी कितना अपने को संयम और नियम में रखा हुआ होगा, वो देखा हमने। फिर एक बार फिर हम तो जब आप इंजीनियरिंग पास करके आए, तो हमने अपने लौकिक माता पिता ज्ञान में आ गए थे, हम उनको भी ले आए, सबको ले आए। तो बाबा ने कहा मैंने तो कहा था पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, तो चलो छोड़ो कोई जॉब मत करो, हमें भेज दिया दिल्ली में जगदीश भाई जी के पास, वहां सेवा में लग जाओ। तो वहां हम पहले जयपुर जा रहे थे, फिर हमको वहां सेवा में भेज दिया। कई साल तक दिल्ली में रहे, बहुत साल तक जगदीश भाई के पास रहे, फिर कृष्णनगर में बहुत साल तक रहे। तो इसी बीच में क्या हुआ कि चित्रशाला बन गई वहां हमारे पास, चित्र बनने शुरू हुए बॉम्बे में। तो हम बाबा के पास एक दिन है, बाबा ने कहा जाओ बच्चे बॉम्बे जाओ, अभी बैठे हैं क्लास में, फौरन टिकट कटाया जाओ बॉम्बे जाओ। बाबा तो फट से काम करते थे, ये नहीं कि आज नहीं कल, आज का आज ही जाओ और देखो क्या बन रहा है वहां। हम देख के आए चित्रशाला, चित्र बन रहे तो देख के आए वापस आए। तो हमें कॉपी करने का बड़ा शौक था, फटाफट हमने स्टाइल ली, एक दिल्ली में चित्रशाला खोल दी। ये चित्र बने हुए ना देखो, ये वाले हैं और कोई चित्र वाले हैं, ये स्वर्ग है, ये सब वहां के बने हुए वहां के। तो चित्रशाला बनी, तो देखो हम एक दफा बाबा के पास चित्रों का सेट लेके आए, 20 चित्रों का सेट, और यहां हिस्ट्री हॉल में रखा। बाबा आए और दीदी थी, बाबा थे, देखा बड़ा अच्छा लगा। और बाबा ने हमें अपने कमरे में बुलाया, बच्चे मेरे पास आओ, गए। बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी, चित्र 20 थे, ऑयल पेंटिंग थी, नई नई पहली अटेम्प्ट थी। बाबा ने फिर वरदान दिया, कहा बच्चे मेरे साथ बैठो गद्दी पर, बाबा की गद्दी है नीचे वाली, ऊपर वाले नीचे वाली, कि मेरे साथ बैठो। मैं तो हिचकिचा रहा था, बाबा के साथ कैसे बैठू। बिठाया, प्यार किया। बाबा ने फिर महावाक्य उच्चारण किए, वरदान दे दिया एक बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी, बच्चों की गद्दी। फिर आगे बोला यहां भी और वहां भी, वहां कहां कहां बोलो, और क्या चाहिए, हमको तो वरदान मिला हुआ है और आपको भी वरदान है। बच्चे अगर अभी आप बाबा की गद्दी संभालते हैं, कोई सेंटर संभालते होंगे और घर को भी समझते हैं कि ये मेरा नहीं है, किसका है, वो बाबा का, समझते हैं ना, हाँ या ना। तो वो बाबा की गद्दी अगर समझेंगे तो यहां बाबा की गद्दी तो बच्चों की बाबा के, बाबा के बच्चों की, तो वहां भी गद्दी मिलेगी, तो ये अच्छा है वरदान। तो आप अभी अगर समझेंगे बाबा की गद्दी है तो ठीक होगा ना, अच्छी बात है ना। तो और ये ऐसा समझकर कार्य करेंगे तो एक तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। होगा तो बाबा का, जब आप समझते हैं बाबा का तो वही जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं है। तो ये हमेशा रखना चाहिए, जो बाप का ये जो भी मेरा कारोबार है ये बाबा का है, उसके निमित्त कर रहा हूं, और यहां ऐसा बनूंगा तो वहां भी ऐसा बनूंगा। तो बड़ी खुशी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो ये इसी एक वरदान से बहुत सेवा हुई, सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी। आप बताओ उस वक्त कोई थोड़ा, एक कंप्यूटर थे, हर एक चित्र हाथ से बनता था, ये हाथ से बने हुए चित्र है, ये हर एक चित्र आर्टिस्ट लगाए, 4-5 चित्र बनाते थे, कभी कहीं भेज रहे हैं, कभी कानपुर, कभी बॉम्बे, कभी कहीं, एक चित्रशाला खोली थी। वहां म्यूजियम बने बड़े बड़े, बाबा नहीं कहते म्यूजियम में सेवा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, बाबा रोज कहते हैं, तो कितने म्यूजियम बने, बॉम्बे बना, उसमें दिल्ली में 2-3 म्यूजियम बने, कभी कहां कानपुर बना, कभी लखनऊ बना, कहां बना। वो ड्यूटी बाबा ने हमारी लगाई कि करो यार, क्योंकि आर्टिस्ट रखे हुए थे, तो बहुत बड़ी बाबा ने सेवा कराई इसी एक वरदान से, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, बड़ा उमंग उत्साह भर दिया, ऐसे करा है। फिर तो धीरे धीरे करते करते जगदीश भाई जी की भी हेल्प करते थे, वो फॉरेन सेवा में जाने लगे, तो उन्होंने कहा आप ये लिटरेचर डिपार्टमेंट भी संभालो, आप जो है इसको भी करो, हमें अनुभव था उसका, तो वो भी हम संभालना शुरू कर दिया। ज्ञानमृत भी संभालना शुरू किया, हमें बहन मिल गई एक उर्मिला बहन, वो जो लिखती बहुत अच्छा है, बाबा ने जैसे भेज दी। इस प्रकार से सारा कारोबार चलता रहा, आगे बढ़ रहा है। देखो हम जब दादी यहां थी, दादी प्रकाश मणि, कहते क्या वहां बहुत फैल गया, जब हमारे सेवा केंद्र बहुत बढ़ गए, मैगजीन भी बहुत बढ़ गई, थे फिर कहां जाए, पहले कहा नोएडा में जगह ले खरीदे कुछ करे, फिर नहीं, शांति वन में आ गए, यहाँ प्रेस बना, यहाँ पर दादी ने कहा यहाँ आ जाओ। तो उस वक्त जब हम आया तो केवल 35,000 मैगजीन थी, इस वक्त 3,50,000 मैगजीन है। इतनी यहाँ आके तरक्की की, तो बाबा दो को कितना आगे बढ़ाता जा रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो ये तो एक बाबा मम्मा के साथ अनुभव है। बाबा मम्मा देखो, आज कल था मुरली में, तो आज था कि हमारा कोई हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विशेष हो, विशेष। तो मैं बता दूं, बाबा मम्मा का या दादियों का भी हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विशेष होता है, ऑर्डिनरी नहीं होता उनका, बाबा मम्मा का तो खास। वो किसी को ऐसे देख भी लेंगे ना यूं, वो उड़ जाएगा, सच्ची। किसी पे चलते चलते ऐसे हाथ रख देंगे ना, वाह, वो खुशी से नहीं पूरा समाएगा। यानी हर चीज विशेष थी, शरीर ऐसा था जैसे रूई जैसा, इतना सूक्ष्म शरीर था। बाबा से मिलते थे, मम्मा से मिलते थे। इस प्रकार से बड़ी खुशी हुई। अब हमें क्या करना है, बाप सम्मान बनना ना, ये एक और थोड़ा अभी टॉपिक है, क्या बनना, हमने क्या बनना है, बाप समान बनना है। बाबा क्या बन गए, कर्मातीत फरिश्ता बन गए, देख लो, पुरुषार्थ कर करके। पहले तो उन्होंने अपना, देखिए एक मुरली में आया था, मैंने अपना तन मन धन जन सब कुछ सुहा कर दिया, ये बाबा ने एक पुत्र कहा। फिर सोचता हूं क्यों किया, बताओ बाबा ने क्यों किया, जवाब दो, है? क्या कहा बाबा ने, कहा इसलिए क्या कि अंत में मुझे कुछ भी याद ना आए। सुन लो भगवानो वाच, बाबा ने खुद ही इस क्वेश्चन किया, खुद ही जवाब दिया कि अंत में मुझे कुछ भी याद ना आए। तो अब देखो, अंत में कोई लौकिक नहीं था, अलौकिक भी नहीं था, केवल एक दादी का हाथ था, हाथ डाला और उड़ गया, बताओ। ये है जानने का तरीका, क्यों, कोई अपना था ही नहीं, सब कुछ बाबा ने निछावर कर दिया। तो जाना तो हम सभी को ऐसे है ना, कैसे, कर्मातीत फरिश्ता बन के जाना है ना। कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज बोलो, पहली स्टेज है विकर्मा जीत। आपका टाइम कब तक है बहन जी, 1 बजे तक है ना कि नहीं। पहली स्टेज है विकर्मा जीत, विकर्म अब कोई नहीं होना चाहिए, बस हम ब्राह्मणों से विकर्म नहीं होना चाहिए। विकर्म शब्द हमारी बुद्धि से मन से बाहर, नो नॉट एट ऑल। अगर अब भी विकर्म हुआ तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, बाबा कहते हैं नो विकर्म, ठीक है, ये इस पे तो आपका सबका जीत होगी। विकर्मा जीत तो है कि नहीं है, विकर्मा जीत है, यस और नो, हाथ खड़ा करे, हाँ सब है, वेरी गुड, नो विकर्म, पहली स्टेज तो ये है। दूसरी स्टेज क्या है? दूसरी है विकल्पाजीत, कि अब कोई विकल्प भी नहीं आना चाहिए। सुना भाई, नो विकल्प। कितना विकल्प से क्या नुकसान है? बाबा कहते हैं बच्चे, पहले बाबा शुरू शुरू में कहते थे बच्चे कोई अर्जा नहीं, विकल्प आता है कोई बात नहीं, कर्म में मत आओ। लेकिन अब वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो विकल्प आना मींस जो बैटरी आपने चार्ज किया है वो डिस्चार्ज हो जाती है। सुन लो, डरना चाहिए, डोंट गो इन, उसमें जाओ मत, विकल्प को स्टॉप करो, रिप्लेस करो, नो विकल्प। सुना जी, दूसरा स्टेप है विकल्पाजीत, इसमें भी आप सब पास होंगे, मैं समझता हूं मैं पास ही होंगे। अब क्या विकल्प आते होंगे? बाबा की याद है, बाबा मिला, इतना बड़ा इसलिए परिवार मिला, इतनी बच्ची मिली, ये की अब तो विकल्पों से पार चले गए। ठीक है, हाँ जी, मैं हाथ खड़ा करता हूँ आपकी तरफ से, विकल्पाजीत। हाँ, नंबर दो है विकल्प, कोई ना खड़ा करे तो बुरा लगता है ना, तो आप, मैं समझता हूँ सब विकल्पाजीत है। तीसरा क्या है फिर उसके नेक्स्ट? तीसरा स्टेज है व्यर्थ अतीत। यह है बात, विकल्पाजीत भी बनना आसान है, विकर्माजीत तो है ही है, व्यर्थ अतीत व्यर्थ ना हो। हमारी दादी गुलजार जी से बात हुई, नहीं वो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, अभी मेरे बच्चों में विकल्प विकल्प नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा व्यर्थ है, ऐसे बाबा ने कहा था। तो व्यर्थ भी नहीं चाहिए। अब व्यर्थ किसे कहते हैं आप बोलो, व्यर्थ क्या है? व्यर्थ मैंने, हम पहले बाबा कहते थे क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, ये क्वेश्चन उठाना, ये व्यर्थ है। ये तो है ही व्यर्थ, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। अब जैसे हम आ रहे थे, हमारा ड्राइवर लेट आया, मैंने कि भाई तुम उसे पूछो, मैं चिंता करता रहूं वो क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, बस कोई रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, ये नहीं हो गया। बाबा कहते इन बातों से निकलो, नो नहीं, जो व्यर्थ क्यों क्या से भी निकलना है, ये तो मोटा मोटा रूप है। अब दादी गुलदार जी से मेरी बात भी कहते नहीं, ये तो है ही है, ये तो है क्यों क्या क्या, लेकिन जिस समय जो संकल्प चाहिए वो संकल्प है, वो है ठीक संकल्प। अभी आप बैठे हैं, आपको सूरत का ध्यान आ गया, मिसाल यहां बैठे और पहुंच गए सूरत, तो ये व्यर्थ है बाबा कहते। या अभी आप बैठे खाना खाने लेट हो रहे हैं, तो ये भी व्यर्थ है। आप जा तो सकते हैं, जब तक मैं बैठा हूं क्लास करा रहा हूं, तो बाबा कहते ये भी व्यर्थ है। जिस समय जो संकल्प चाहिए वो आना, ये ठीक है। तो व्यर्थ को भी समाप्त करना है। अब व्यर्थ को समाप्त करने के लिए क्या करें? समर्थ संकल्प चाहिए, बस। श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, विशेष संकल्प चाहिए। देखो, मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, दो इकट्ठे कभी नहीं आएंगे। आप कहेंगे ना मैं दो बातें सोच रहा हूं, वो दो संकल्पों में 100 सेकंड का अंतर हो सकता है, कभी दो इकट्ठे आ ही नहीं सकते, क्योंकि मन में एक ही संकल्प आएगा। तो क्या है, और सब संकल्पों को हटाओ, जो व्यर्थ मने, मैं तो कहता हूं सिवाय इस याद के सब व्यर्थ है, सच कहता हूं। ये बातें करो, वो बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, छोड़ो, अपने आप हो जाएगी सेवा। आप याद में बैठो, बाबा की याद करो, अपने को आत्मा तो बाप को याद करो, पहले तो ये करो। सबसे समर्थ बात तो यही है। तो ये समर्थ संकल्पों को, विशेष संकल्पों को लाना, उससे तो विकल्प तो छोड़ो, विकर्म तो छोड़ो, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। हम तो भाई कोशिश करते हैं, बने तो नहीं है, कोशिश करते हैं ये शुद्ध संकल्पों को लाते हैं। मैं कौन, दादी जान कहती है, मैं कहां का, मैं किसका, कहां का, कैसे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, ये सब संकल्प है, शुद्ध संकल्प। कर्म इंद्रियों का राजा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, अपने बारे में शुद्ध संकल्प परम धाम का हूं। शिव बाबा को देखो, बाबा ने एक दिन कहा योग क्या है, बड़ा अच्छी बात सुनाई, अरे आप मुझे देखो मैं आपको देखूं, कहा एक मुरली में एक दफा, याद है एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे योग कुछ नहीं तुम मुझे देखो मैं तुमको देख रहा हूं। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा। परम धाम में पहुंचो और शिव बाबा को तीसरी आंख से देखो, बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आप देखो एक मिनट भी देखोगे कितनी खुशी होती है आप देखना, ये है योग। और कुछ बिंदु रूप क्या है? परम धाम में पहुंचो, आत्मा मान के बैठो और बाबा को बिंदु को देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और कोई संकल्प ना आए इसी में महू हो जाओ, ये बिंदु रूप की याद है। बहुत खुशी और बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, बाबा आपको देखे आप उसको देखो, याद करो। अगर और करना है कि मन और बुद्धि दोनों है, बुद्धि देख रही है, मन क्या करेगा? मन में शुद्ध संकल्प करो, मैं वो अपने गुणों को याद करो, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, ये जो गुण है अपने गुणों को याद करो, बाबा के गुणों को याद करो, अपने घर को याद करो, ये सब बातों को याद करते रहे, शुद्ध संकल्प में रमण करो, बिंदु रूप की भी याद करो। तो बाबा ने देखो एक दफा कहा था अपने पांच स्वरूपों को याद करो, कहा ना वो पांच रूप करते को याद, आप बाबा ने कहा था सारे दिन में पांच बार पत्नी आठ बार याद करो, करते आठ बार याद करना चाहिए। तो इस प्रकार से शुद्ध संकल्प में रमण करते चलो, बिंदु रूप को भी याद करे। मैंने एक दफा दादी गुलदार से पूछा, दादी ये तो बड़ा आसान तरीका है, बाबा ने बताया आठ स्वरूपों पांच स्वरूपों को याद करो तो हम बार बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। कहते ये भी करो और बिंदु रूप को भी करो, दोनों याद करो, दोनों बातें करो। इस प्रकार से हम अपने व्यर्थ को समाप्त करें, समर्थ संकल्पों को में टिके रहे, तो जिससे क्या कि हमारे में वो पावर, देखो शुद्ध संकल्पों में पॉजिटिव संकल्पों में पावर आती है और प्योरिटी आती है, दो चीजें आती है, यानी प्योर संकल्पों में पॉजिटिव संकल्पों में प्योरिटी आती है तो पावर आती है, दो चीजें आती है। और सत्युग में क्या चाहिए? देखो दो चीजें चाहिए, क्राउन ऑफ लाइट प्योरिटी और क्राउन ऑफ माइट पावर, वो आता है इन पॉजिटिव विचारों में रमण करते रहो करते रहो करते रहो, व्यर्थ को समाप्त कर दे, जिससे क्या है कि ऐसा लगेगा आप जहां से गुजरेंगे कहेगा कि लाइट जा रही है। आप एक हफ्ता भी करके करें पुरुषार्थ और कोई बात ना है, यही संकल्प आते रहे शुद्ध, तो आप है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, भट्टी में आए और कुछ चेंज होकर वो लेके जाइए, ये हमारी आपके प्रति शुभ इच्छा है, शुभकामना है, शुभ भावना है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हैं? हाँ, हैप्पीएस्ट स्टेज वो थी जब बाबा ने सेवा में लगाया, बाबा ने अपना बना लिया, इंजीनियरिंग पास करके आए, बाबा ने कहा कोई दरकार नहीं जॉब की, इसी में लग जाओ, दैट वॉज माई हैप्पीएस्ट डे। और आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, ये भी हैप्पी डे है। ओम शांति, क्योंकि टाइम आपका हो गया, ध्यान ले लिया।
सबने तो बहुत सुंदर विधि से सुनाया हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट डे, लेकिन आपकी बातों से आपकी अभिव्यक्ति से तो महसूस होता था कि आज भी वही चीज आपके अंदर में आपको खुशी शक्ति प्रदान कर रही है। वो खुशी आज भी आपकी अभिव्यक्ति में थी, आपके अंदर वो जो दृढ़ता है ऐसा महसूस करा रही थी कि सचमुच हमें भी वही करना है। इतनी खुशी, इतनी शक्ति, इतना नशा अपने अंदर में भरना है। बहुत सुंदर बात भाई सबने कही, याद ही समर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। एक बाबा की याद, एक लगन, बस उसी में खो जाओ, उसी में समा जाओ। मैं समझती हूँ बच्ची के लिए अगर हम दो दिन ये भी अंडरलाइन अपने अंदर कर लें, बस एक बाबा की याद, यही नशा, यही प्यार बाबा का समा जाए अपने अंदर में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।